أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد سورة النحل آية 125، ادعو إلى سبيل ربك، اے رسول اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی یا احسن، اور ان لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں بحث کرو، بہترین انداز میں بحث کرو. ان ربک ہو اعلم، تم یقیناً آپ کا رب بہتر جانتا ہے، کہ بمن ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. کہ اس آیت میں وہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، کہ جس میں حکمت بھی ہو، عقل مندی بھی ہو، اور موعظۃ حسنہ اچھی نصیحت بھی ہو. کہ ان مواقع سے کہ جن میں حکمت بھی ہوتی ہے اور موعظۃ حسنہ بھی ہوتا ہے، ان میں سے ایک موقع وہ کرونا وائرس کی ایپیڈیمک ہے. کہ کرونا وائرس 2019 پینڈیمک جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آج 20 مارچ کے اعداد و شمار کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ اموات واقع ہو گئی ہیں، اور 180 سے زیادہ ممالک میں یہ بیماری پھیل چکی ہے، یہ وائرس پھیل چکا ہے. اس لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو پینڈیمک کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کہ یعنی یہ وہ بیماری ہے جو کہ تمام ممالک کو تقریباً سوائے چاند ایک کے وہ اثر انداز کر رہی ہے، کہ ان میں موجود ہے اور ان میں مسلسل پھیل رہی ہے. بعض کمنٹیٹرز کے مطابق کہ یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سب سے بڑا دنیا کا ایونٹ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، کہ سب سے بڑا گلوبل ایونٹ ہے جو کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد ہوا ہے. کہ اتنے بڑے گلوبل ایونٹ کا اور کسی وبا کا یا کسی بیماری کا اتنے بڑے لیول پہ پھیل جانا، کہ ایک بہت بڑی نشانی، ایک بہت بڑی آیت ہے، کہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جتنی قدرتی آفات اور بلائیں آتی ہیں ان کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی تنبیہ کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے موعظے کے لیے آتے ہیں. اگر صرف عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو جتنی بیماریاں یا وبائیں یا کوئی اور واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں عقلی طور پر اس میں پیس آف ایڈوائس ہوتا ہے، ایک طرح کی نصیحت ہوتی ہے، کہ ایک لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، جو کہ اس واقعے سے کہ دنیا کے تمام عقل مند وہ سبق حاصل کرتے ہیں یا مختلف اسباق حاصل کرتے ہیں، کہ ہر کوئی اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کہ اس تجربے سے، اس واقعے سے کچھ سیکھتا ہے. تو قرآن کی روشنی میں یہ بہترین موقع ہے کہ کرۂ ارض کے انسانوں کو دین اسلام سے، خدا کی توحید سے، और दीन इस्लाम के असूलों से रोशनास कराया जाए, आशना करवाया जाए और दीन इस्लाम का उनके सामने तारफ पेश किया जाए कि ये कोरोना वायरस की एपिडेमिक कि जिसमें तुम ज़ाहरी सेहत का ख्याल रख रहे हो कि उसकी एहतियातें क्या क्या हैं, और उसके अलावा इससे बड़ी मुसीबत वो क़यामत की मुसीबत है कि जिसमें हिसाब किताब होगा, कि जिसमें इंसान की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी का आगाज़ होगा, कि उस हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए क्या एहतियाती तदबीरें इस दुनिया के लोग इख्तियार कर रहे हैं, जो कि तौहीद हर इंसान की दिल की फितरत में वो नक्श है कि तालीमात इस्लाम के हर इंसान के दिल की फितरत में नक्श हैं। इसलिए चीन के लोगों के लिए भी कि जिनमें इस पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर हुआ है, उनके लिए भी इस्लाम की दावत है इस आयत में, और बाकी तमाम भी गैर इस्लामी ममालिक के लिए इस्लाम की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ की दावत है कि इस रास्ते को अपनाने से कि दुनिया के मसाइब को भी बर्दाश्त किया जाता है, कि उससे भी गुज़रा जाता है, और इसी रास्ते पे चल के आखरत की तरफ भी अपनी हरकत को वो गारंटी किया जाता है कि उसकी ज़मानत भी, कि एक अच्छे सवाब की ज़मानत भी हासिल की जाती है। क्योंकि इस्लाम में एक अमवात के बारे में, खसूसी तौर पे किसी बीमारी, किसी वबा की अमवात हो या कोई भी मौत वाक़या हो, तो उसके लिए कलमा इस्तिरजा है। कि कलमा इस्तिरजा के अल्फाज हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। यानी इंसान को उसके मबदा, उसके आगाज़ और उसके माद, उसके अंजाम को याद दिलाया जाता है इस कलमा में। उसी तरह ये पेंडेमिक भी इंसान को उसके आगाज़ और उसके अंजाम को याद दिलाती है, और इसमें जो मौतें वाक़ होती हैं कि उनका एक ख़ास उनमें हिकमत है, जो कि दुनिया के खल्क करने वाले खुदा की तरफ से उसमें पोशीदे है। और इस बीमारी के दौरान में जो सख्तियां आती हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की एक ख़ास हिकमत है कि जो कि उसमें पोशीदे है। मसलन एक और आयत में आता है, वनबलुवन्नकुम मिनल शैए मिनल खौफ वल जू, कि हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे, कि हम तुम्हें भूख से अबवाएंगे, व नक्सम मिनल अमवाल, और मालों के और जानों के नुकसान से हम आजमाएंगे, और जो लोग सब्र करने वाले हैं उनके लिए बशारत है। तो इंसानों के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इलाही तालीमात की रोशनी में मसाइब को बर्दाश्त करें, मसाइब से गुज़रें, मसाइब का हल ढूंढें, और या सिर्फ़ मादी नुक्ता नज़र से उस मसले को देखें, उस मसले का मुशाहिदा करें, कि इन दो रास्तों में बुनियादी तौर पे बहुत फ़र्क है। कि अगर अल्लाह की तालीमात के साए में इन मसाइल का मुकाबला किया जाए, इन मसाइल को बर्दाश्त किया जाए, उनका हल तलाश किया जाए, तो इससे इंसान को ना सिर्फ इस दुनिया में कल्बी सुकून मिलता है, बल्कि उसके लिए आखरत में सवाब और कामयाबी की ज़मानत भी मिलती है। इसलिए इस पेंडेमिक में तमाम लोगों के लिए वो मौज़े हैं, वो नसीहतें हैं, वो तालीमात इलाही की तरफ रहनुमाई है, इसमें हिदायत है कि हिदायत इलाही पोशीदा है कि उस हिदायत इलाही को वो एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, कि उसको ढूंढना चाहिए कि इस पैंडेमिक आखिर इंसानों पे क्यों वारद हुई। उस खुदा की तरफ से जो कि इंसानों से वो उनकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो इतना मेहरबान और करीम खुदा कि आखिर उसने इंसानों के लिए इस कुरआज पे पेंडेमिक क्यों भेजी। तो कुरान इसका जवाब देता है कि अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आते हैं, आजमाइशें आती हैं, ताकि वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, वो लोग जो नेकियों की राह इख्तियार करने वाले हैं, उनको उन लोगों से अलहदा कर लिया जाए कि जो लोग नेकियों की बजाय बुराई का रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और एक आखरत में हिसाब व किताब का मरहला आने वाला है कि जिस पे वो कौमें कि जो ईमान नहीं रखती वो उस रास्ते की तरफ बढ़ें और ईमान की तरफ बढ़ें और उन्हें ये इस्लाम की तरफ दावत देने का बेहतरीन मौका है कि अच्छे दलाइल से वो लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि वो बाकी कौमों को, बाकी मुल्कों को, बाकी इंसानों को अल्लाह की इस हिदायत की तरफ, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दें। कि हम इसी सिलसिले में कि ये वायरस किस तरह फैला और इस वायरस में फैलाव में जो सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या हैं, उनका भी मुतालिया करेंगे। कि ये वायरस सबसे पहले कि चीन के शहर वो वुहान से शुरू हुआ और वुहान से ये वायरस वो आगे फैलता गया और वहाँ पे जो उसको ट्रेस किया गया तो इसका ताल्लुक ये देखा गया कि उसकी जो सी फूड मार्केट थी कि जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की फरोख्त ज़्यादा होती थी, कि उसको इनिशियली शुरू में उसके साथ लिंक करने की कोशिश की गई। और जब इस वायरस को देखा गया इसकी साख्त क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये नज़र में आया कि ये जो बैट का वायरस है इसमें और उसकी जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड का फ़र्क है कि जो कि म्यूटेशन से तब्दील हो के कि वो कोरोना वायरस सार्स वायरस 2 की शक्ल इख्तियार कर गया है और अब सारी दुनिया में ये फैल रहा है, ये पेंडेमिक की शक्ल में फैल रहा है। तो इससे इस्लाम की हलाल ग़िज़ाओं की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। इस्लाम ने जो हलाल ग़िज़ाएँ रखी हैं तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी हिकमतें हैं कि एक हिकमत ये है कि वो इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो कि हलाल जानवरों के खाने से नहीं होती बल्कि हराम जानवरों के खाने या उनके सूप बना के पीने से वो होती हैं, तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई की है, इसलिए हलाल और हराम का तसव्वुर दिया है और हलाल और हराम से उन्हें बहुत सी बीमारियों और बहुत सी वबाओं से बचा लिया है। कि ये भी तमाम अक्वाम आलम के लिए एक नसीहत है कि अल्लाह ताला की हलाल करदा ग़िज़ाओं में गौर करें कि उनमें कितनी हिकमतें पोशीदा हैं और वो इंसानियत के लिए कितनी फलाह और कितनी सेहतमंदी का बायस हैं। कि जिस तरह मसलन शराब को हराम किया गया है, अल्कोहल को हराम किया गया है, तो आज की तिब्बी दुनिया ने ये साबित किया गया है कि ये सारे जिस्म पे इसके मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। तो इसी तरह के बैट जो है वो भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है, जिसको उर्दू में चमगादर कहते हैं, या बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं कि जिनसे अगर ये जो कोरोना वायरस हैं कि जिनसे वो ट्रांसमिट हो के या उनको इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे अगर लिया जाए। मसलन एक और जानवर जो कि पेंगोलिन के नाम से वो मौसूम है कि उसकी जब सीक्वेंस देखी गई तो वो भी कोरोना वायरस से मिलती जुलती थी, लेकिन वो 92% सिमिलरिटी थी, जबकि बैट से 96% सिमिलरिटी थी। तो इस बुनियाद पे ये नतीजा निकाला गया कि पेंगोलिन में जो वायरस मौजूद है वो पेंगोलिन इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे वो एक्ट नहीं कर सकता, बल्कि इस वायरस की ट्रांसमिशन शायद ये जो बैट का वायरस है उससे वो म्यूटेशन होके वो आगे बढ़ी है। बहरहाल ये एक थ्योरी है, एक नज़रिया है, लेकिन इसके वो बड़े दूर रस नतायज हैं और इन एहतियातों को मद्देनज़र रखने में, इसीलिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एहतियातें लगाई हैं उनमें से एक एहतियात ये है कि जो खाने की चीज़ें हैं मसलन गोश्त वगैरह, उन्हें अच्छी तरह पहले धो लिया जाए और फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह पकाया जाए ताकि ये वायरस अगर मौजूद भी है तो धुल जाए। इसी तरह कुछ और आसान किस्म की एहतियातें हैं, मसलन सबसे बड़ी एहतियात वो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है कि हाथों को 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से धोया जाए, कि खसूसी तौर पे कि हाथ अगर किसी और जगह पे लगें, किसी सरफेस पे लगें, तो उसके बाद उनको आँखों या नाक या मुंह में ना ले जाया जाए, क्योंकि इससे वायरस के फैलाव में वो मदद मिलती है और वायरस का फैलाव वकूफ पजीर होता है। तो इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये वायरस किस तरह से फैलता है। तो ये वायरस बुनियादी तौर पे दो तरीक़ों से फैलता है, कि एक वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब कोई वायरस का मरीज़ खांसता है या उसे छींक आती है तो उसकी छींक में या उसकी खांसी में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे होते हैं कि जिनमें ये जरासीम बैठा हुआ होता है, जिनमें ये वायरस बैठा हुआ होता है, और वो नन्हे नन्हे कतरे जब किसी दूसरे इंसान के तनफ्फुस में सांस में दाखिल होते हैं, उसके फेफड़ों में दाखिल होते हैं, तो उसके सांस की नालियों को और उसके फेफड़ों को असरअंदाज और मुतासिर कर देती हैं। और इस तरह इस ये वायरस जो शुरू की अलामत होती हैं कि वो ज़ुकाम, बुखार और खांसी की शक्ल में और जिस्म में दर्द की शक्ल में या सर में दर्द की शक्ल में नमूदार होती हैं, कि ये पहली अलामत हैं जो कि अक्सर लोगों में पाई जाती हैं। और इन अलामत के बाद इंसान के अंदर जो दिफाई निज़ाम है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, कि उसके ज़रिए ये अक्सर लोग इस पे काबू पा लेते हैं और इससे रिकवर हो जाते हैं। वायरस का इंसान के अंदर पहली दफ़ा आने के बाद कि उस और उसकी अलामत ज़ाहिर होने के दरमियान का जो वक्त है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड वो 2 से लेके 14 दिन तक और कॉमनली 5 दिन तक होता है। तो 14 दिन तक एक केस में इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो 27 डेज भी वो कोट हुआ है, लेकिन अक्सर औकात 14 दिन की क्वारंटीन से इस बात को वाज़े किया जाता है कि इस शख्स में वो वायरस दाखिल हुआ है या अभी तक इसके जिस्म में वायरस दाखिल नहीं हुआ, इसलिए क्वारंटीन की मुद्दत जो है वो 14 दिन रखी गई है। और क्वारंटीन का मतलब ये होता है कि उस इंसान को बाकी लोगों से वो तन्हाई में आइसोलेशन में रखा जाए और उसके सांस और उसके जो छींके हैं उसको फैलने से रोका जाए, उसे मास्क पहना दिया जाए। और इस तरह जो दूसरा तरीका है इसके फैलाव का वो ये है कि ये जब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये जब खांसी या छींके उस मरीज़ के जिस्म से बाहर निकलती हैं तो वो 1 मीटर के वो फासले तक वो जाती हैं। एक मीटर में जितनी सरफेसेस होती हैं, जितनी सतहें होती हैं, चाहे वो स्टील की हों, चाहे वो ग्लास शीशे की हों, चाहे वो प्लास्टिक की हों, कि उनके ऊपर ये वायरस जाके बैठ जाता है और 72 आवर्स तक वो वहाँ पे ज़िंदा रहता है और वहाँ पे वो दूसरे अशख़ास को मुतासिर करने की वो कुव्वत रखता है, पोटेंशियल रखता है। तो अगर किसी सरफेस को कोई दूसरा शख्स आके छुएगा कि जहाँ से वो कोरोना वायरस का मरीज़ गुजर गया है, तो फिर उसके बाद अपनी आँखों या अपने नाक या अपने मुंह को लगाएगा तो वो वायरस उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह जो दूसरी एहतियात बनती है वो ये बनती है कि जब भी कभी आप किसी सरफेस को हाथ लगाएं कि जो किसी ऐसे शख्स के करीब हो कि जिसको खांसी है या किसको बुखार वगैरह की अलामत हैं, तो अपने हाथों को अच्छी तरह से फिर साबुन और पानी से धो ले, और साबुन और पानी से धोने से वो वायरस आपके हाथों से धुल जाएगा और आपके जिस्म में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह इस्लाम में भी आया है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लें और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धो लें। या हमारे यहाँ मसलन वुज़ू का तसव्वुर है कि खाना खाने से पहले भी वुज़ू करने का सवाब है और खाना खाने के बाद भी वुज़ू करने का सवाब है, और इसी तरह सोने से पहले भी वुज़ू करने का सवाब है, और बार बार वुज़ू करने का सवाब अलहदा है कि जो तजदीदी वुज़ू का सवाब अलहदा है, जिसको नूरुन अला नूर कहा गया है कि एक नूर के बाद वो दूसरा नूर है। तो इस तरह हमारा जो वुज़ू का तसव्वुर है वो ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग को कवर करता है कि ये उसमें शामिल है। और जो लोग वुज़ू करना चाहते हैं या जो लोग दायमुल वुज़ू बनना चाहते हैं या दायमुल वुज़ू होने के कायल हैं, तो वो भी इस वायरस से बचाव में आ जाते हैं कि दायमुल वुज़ू होने का अपना मानवी मर्तबा भी है कि उससे कुर्बत खुदा हासिल होती है, अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है, और दुनियावी तौर पे फ़ायदा भी हासिल होता है कि आप कोरोना एपिडेमिक से बच सकते हैं। इसके अलावा जो अगली एहतियात है वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें कि जितने भी लोग हैं कि जिनको खांसी वगैरह है उनसे आप 1 मीटर से ज़्यादा का फासला रखें, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ये 1 मीटर के फासले तक चल सकती है, और अगर ये फासला 1 मीटर से ज़्यादा हो तो फिर ये इन्फेक्शन नहीं चल सकती। तो इसलिए सोशल डिस्टेंस के जितने भी वो इज्तिमाआत हैं कि उनमें अगर सोशल डिस्टेंस वो 1 मीटर से कम हो तो उन इज्तिमाआत का अगर वायरस का फैलाव ज़्यादा हो तो रोकना पड़ेगा, और अगर कम हो और इतना ज़्यादा ना फैलाओ तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ पे वायरस का फैलाव ज़्यादा है वहाँ पे इज्तिमाआत को वो रोकना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हुकूमतों को, मुल्कों को इस सिलसिले में मुख्तलिफ इकदामात करने पड़ते हैं, जिस तरह चीन में, फिलिपीन में, इटली में कर्फ्यूज़ भी लगाए गए और लॉकडाउन भी किए गए, और आज की खबरों के मुताबिक इटली का पूरा मुल्क लॉकडाउन हुआ हुआ है, और इसी तरह और भी ममालिक मुख्तलिफ जगहों पे लॉकडाउन कर रहे हैं, और पाकिस्तान में हमारे यहाँ सिंध को लॉकडाउन किया गया है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक इसके फैलाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंस है कि जो कि रखा जाता है ताकि इस वायरस के फैलाव से वो रोका जा सके। इसके अलावा कि जितनी भी खुराक इंसान इस्तेमाल करता है कि जो पका के खाई जाती है तो उसको अच्छी तरह से धोया जाए पकाने से पहले, और अच्छी तरह से पकाया भी जाए तो तब ये वायरस वो नहीं वो फैल सकता। दूसरी जो एहतियात वो ये है कि सैनिटाइजर्स यूज़ किए जाए, कि जितने सैनिटाइजर्स वो यूज़ किए जाएंगे तो उतना ही फैलाव उसका कम होगा। और सैनिटाइजेशन के लिए जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कामन चीज़ें अवेलेबल हैं वो हाइड्रोजन पराक्साइड और पायोडीन है, इन दोनों से वायरस जो है वो मर जाता है और इन दोनों से वायरस का फैलाव वो रुक जाता है। तो अगर बाहर सैनिटाइज़र ख़त्म हो जाए तो पायोडीन और हाइड्रोजन पराक्साइड तकरीबन तमाम मेडिकल स्टोर्स पे मिल रही होती है, तो वो लेके अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये उसको एक आसान किस्म का घरेलू सैनिटाइज़र जो है वो बनाया जा सकता है। और अगर कोई अच्छा सैनिटाइज़र वो बाज़ार से मिल जाए तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन तमाम एहतियातों की वजह से, अगर ये बुनियादी एहतियातें हैं, लेकिन इनकी वजह से कि इंसान इस वायरस के फैलाव को रोक सकता है। और जो लोग बाहर के ममालिक से आते हैं कि जहाँ पे इस वायरस का फैलाव ज़्यादा हो चुका है, तो उनके लिए क्वारंटीन और उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है कि टेस्ट जो है वो उसकी किट्स भी आ गई हैं। और वैसे वो पीसीआर से वो टेस्ट होता है कि जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ होता है। इस तरह मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल हैं कि जिन टेस्टों से इस वायरस का पता लगाया जा सकता है कि किसी शख्स को वायरस है या नहीं है। तो इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए कि हमारे पास ये बहुत से रूहानी सहारे भी हैं, मसलन अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में आयात शिफा हैं, या मुख्तलिफ वो सूरतों की तिलावत है जिनके खवास में, इनकी फजीलतों में लिखा हुआ आता है कि इससे मरीज़ों को शिफा मिलती है, या मुख्तलिफ दुआएँ हैं जो कि वो रसूल पाक से मरवी हैं कि जिनमें वो अल्लाह ताला से शिफा मांगी गई है और अल्लाह ताला से तवस्सुल किया गया है, कि उन्हीं में से एक दुआ वो हम आज वो बरकत के तौर पे वो बयान करेंगे कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कि सहीफ़े सज्जादिया में 7 नंबर दुआ के वो मकाम पे आती है, जिसमें हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वो जितने मकारे हैं, कि जितनी वो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं, कि मुसीबतें हैं, उनसे बचाओ और बुरे अखलाक से बचाओ के लिए दुआ मांगते हैं। तो इस दुआ में हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ हिस की तो यानी कि इस कोरोना पेंडेमिक में जो नसीहतें पोशीदा हैं, कि उनमें से एक नसीहत कि इस दुआ के रब्त के उनवान से वो हिर्स की तो यानी है कि हम दुनियावी चीज़ों को, दुनिया के माल को इकट्ठा करने के लिए तो अपनी सारी ज़िंदगी की जद्दोजहद लगा देते हैं, खसूसी तौर पे जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं कि जिनमें अल्लाह ताला का तसव्वुर नहीं है, या वो जो लादीन और एथियस्ट हैं कि वो जो कि खुदा पे यकीन नहीं रखते और किसी आसमानी दीन पे भी यकीन नहीं रखते, कि उनके यहाँ कि सिर्फ हिर्स की तुग्यानी रह जाती है। तो अल्लाह की पनाह उससे मांगी जा रही है कि अल्लाह हिर्स की तुग्यानी से पनाह में रखे, कि ये एपिडेमिक भी यही याद दिलाती है कि देखो मौत किसी भी वक्त आ सकती है, बीमारी या सख्ती किसी भी वक्त आ सकती है, खौफ या भूख या जानों और फलों का नुकसान, अम्वाल का नुकसान वो किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए हिर्स की तोजानी से खुदा की पनाह मांगें। गज़ब की शिद्दत, हसद की चीरा दस्ती, बेसब्री, कनात की कमी, के खसूसी तौर पे इस दुआ में बेसब्री से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है कि ये कोरोना पेंडेमिक भी हमें सब्र करने की तलकीन करती है, कि इस पेंडेमिक से भी वो मुकाबला करने के लिए कि एक दर्जे सब्र की ज़रूरत है, कि इस बेसब्री से कि इस बीमारी का मुकाबला, इस वबा का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। कनात की कमी कि जितनी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं कि उनके मुताबिक इस पेंडेमिक से का मुकाबला किया जाएगा, कनात की जाएगी, काज अखलाकी, ख्वाहिश नफ्स की फरावानी, असबियत के गलबे, कि असबियत के गलबे का खसूसी मौका है कि ये खसूसी नसीहत है इस कोरोना पेंडेमिक की कि देखें बाकी जो दुनिया के इंसान हैं वो भी उसी तरह मर्ज में मुब्तला होते हैं, उन्हें भी उसी तरह तकलीफ़ होती है जिस तरह किसी और मुल्क में होती है। इसलिए इस हिसाब से तमाम इंसानियत के बनी नौ आज़ा जिक दी ग्रहण के बनी नौ एक दूसरे के आज़ा है कि बनी नौ एक दूसरे से मिले हुए हैं कि सब इंसानों का दर्द मुश्तरक है, सब इंसानों का दर्द एक ही है। तो इसमें असबियत से पनाह की दुआ मांगी गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम असबियत का शिकार हो जाएं कि अपने जो है वो मुल्क को तो बचाने की कोई मुल्क कोशिश करे लेकिन बाकी ममालिक के लिए वो पाबंदियां लगा दे कि उनके साथ ताउन ना करे, कि हवाओ हवस की पैरवी, हिदायत की खिलाफ वर्जी। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायतें आती हैं वो दो किस्म की होती हैं कि एक हिदायत तशरी है कि हिदायत तशरी में अल्लाह ताला वो हमें शरीयत के असूलों के ज़रिए कुरान के ज़रिए या सुन्नत रसूल के ज़रिए वो हमारी रहनुमाई करता है, या इतरत अहले बैत की ज़रिए कि उनकी रिवायात के ज़रिए हमारी रहनुमाई करता है, हिदायत करता है। और दूसरी हिदायत हिदायत अकली है कि इंसानी अकल को अल्लाह ताला इल्हाम करता है कि जो साइंसदान हैं और जो डॉक्टर हैं और जो लोग इंजीनियर्स हैं और जो लोग बाकी शोबा है ज़िंदगी में वो अपने अकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हिदायत अकली के समरात लेके आते हैं कि हिदायत अकली के बयानात लेके आते हैं। जिस तरह कोरोना पेंडेमिक्स में मेडिकल गाइडलाइंस हैं कि उन मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से कि अपनी सेहत की हिफाजत के हिफ्ज सेहत वाजिब शरई है कि वो शरई तौर पे वाजिब है। इसी तरह दफ़े ज़रर मोहतमल के वो ज़रर कि जिसका इहतमाल हो उसको दफ़ा करना ये वजूब अकली है। इसलिए वायरस के फैलाव को रोकना वजूब अकली है। तो इस वजूब अकली के लिए और वजूब शरई के लिए वो सब लोगों को उसे मुतल्लिक है ये कि सब लोगों को इस पे अमल करना चाहिए कि सब लोगों को इसकी बरकात और फयूज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि इसीलिए वो हिदायत की खिलाफ वर्जी से पनाह मांगी गई है। ख्वाब गफलत की मदहोशी के इस मुकाबले में कि ख्वाब गफलत या गफलत करने से ये बीमारी और फैलेगी और तकल्लुफ पसंदी से नीज़ बातिल को हक पर तरजीह देने से। तो जो इस सिलसिले में मालूमात हासिल की जाएं कि वो भी अथेंटिक सोर्सेस से वो मालूमात हासिल की जाएं ताकि मालूमात जो हों वो अपनी सेहत के बारे में वो भी हक के बयानात पे मबनी हों, सच्चाई के बयानात पे मबनी हों, कि वो भी बातिल और झूठ के बयानात पे मबनी ना हों या वो मिस इंफॉर्मेशन ना हों। गुनाहों पर इसरार करने के मुख्तलिफ जो वबाएँ या बीमारियाँ आती हैं या कुदरती हादसात या आफात आती हैं कि वो सारी की सारी तो नहीं लेकिन उनमें से बाज जो है वो इंसानों के गुनाहों की वजह से भी आती हैं। इसलिए गुनाहगार लोगों के लिए वो अजाब का बायस बनती हैं और मोमिन और मुसलमान और नेक लोगों के लिए वो इम्तिहान का सबब होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई मुसीबत नाजिल होती है तो वो सब इंसानों के लिए नाजिल होती है, सिर्फ एक इंसान एक फ़र्द या एक ग्रोह के लिए नहीं होती। बाज़ औक़ात और बाज़ औक़ात उसका फैलाव वो पूरा ग्लोबली हो जाता है, पूरी दुनिया तक आ जाता है। मासीयत को हकीर समझने के मासीयत को हमेशा गुनाह को बड़ा समझना चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए कि तौबा व इस्तिग़फ़ार भी वो बीमारियों और वबाओं से निजात का बायस है। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से वो तीन मुख्तलिफ़ सवालात पूछे गए, तीन मुख्तलिफ़ हाजतें पूछी गईं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने वो हर हाजत के जवाब में कहा कि इस्तिग़फ़ार की जाए ताकि इस मुसीबत से निजात हासिल की जाए। कि मुसीबतें तीन मुख्तलिफ़ नौ की थीं कि मुख्तलिफ़ नौयत की थीं, लेकिन जवाब एक ही था कि इस्तिग़फ़ार की जाए। कि इस्तिग़फ़ार इंसान को वो मसाइब से, मुसीबतों से, वो वबाओं से, बीमारियों से निजात दिलाती है। कि अल्लाह ताला के साथ तवस्सुल का बायस होती है और अल्लाह ताला की हिदायत पे चलने का बायस होती है और इताअत को अजीम समझने और इताअत पे वो फख्र व घमंड नहीं करना चाहिए। कि अपनी नेकियों को कभी बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहिए बल्कि अपनी नेकियों को हमेशा कम समझना चाहिए और अपने गुनाहों पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और हमें बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखे। दौलतमंदों के से तफाखुर कि दौलतमंदों के से तफाखुर से पनाह मांगी जा रही है। यानी अगर कोई शख्स सेठ है और उसके नौकर और मुलाजिम जो है वो गरीब हैं तो उसे तफाखुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना आएगा वायरस तो वो मिसाल के तौर पे कि वो दौलतमंद शख्स तो अपने पास वो ज़्यादा सैनिटाइजर ख़रीद के ले आता है अच्छे अच्छे किस्म के, लेकिन जो गरीब उसके मुलाजिम हैं उनको सैनिटाइजर नहीं है अवेलेबल, तो कोरोना वायरस पहले उन गरीब मुलाजमीन को लगेगा। और चूँकि वो हर वक्त उसके पास अपने सेठ के पास वो आते जाते रहते हैं कि उनके काम उन्हीं के ज़रिए होते हैं, तो फिर सेठ भी उससे नहीं बच सकेगा। वो दौलतमंद शख्स अपने तफाखुर की वजह से वो भी नहीं बच सकेगा। इसीलिए ये वायरस अब दुनिया के दौलतमंद ममालिक में भी, दुनिया के तफाखुर पसंद ममालिक में भी फैल गया है। और वो ममालिक जो कि तफाखुर पसंद नहीं है, जो कि गरीब ममालिक हैं, उनमें भी फैल रहा है। कि मोहताजों की तहकीर के इसमें कि पेंडेमिक में सबक यह है कि इंसान एक दूसरे की मदद करें, कि मरीज़ों की खसूसी तौर पे जितनी मदद हो सकती है वो की जाए और अपने ज़ेर दस्तों की बुरी निगहदाश्त, कि अपने जो ज़ेर दस्त हैं कि उनको अच्छी तरह निगहदाश्त करें और जो हमसे भलाई करे उसकी नाशुक्री से, और इससे कि हम किसी ज़ालिम की मदद करें और मुसीबत ज़दा को नज़रअंदाज करें। कि इस पेंडेमिक में ये एक बहुत बड़ी नसीहत है कि इस मुसीबत में कि किसी मुसीबत ज़दा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कि वो भी हमारी तरह का इंसान है, वो भी इस मुसीबत में फंसा हुआ है। जिस तरह ये मुसीबत हम पे वारद हुई है, जिस तरह एक ये मुसीबत एक मुल्क पे वारद हुई है, इसी तरह ये दूसरे मुल्क पे भी वारद हुई है। तो दूसरे मुल्क पे अगर इक्तसादी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ तो ये मज़लूम को, ये मरीज़ों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ़ है। कि अगर वो अपनी तिब्बी सहूलियात उन पाबंदियों की वजह से ना ख़रीद सकें, कि अगर वो अद्वियात को उन पाबंदियों की वजह से ना ख़रीद सकें, तो ये मज़लूम को, मरीज़ों को नज़रअंदाज करने की मिसाल है कि जो कि इंसान के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। कि ये हर इंसान का हक है कि उसको मर्ज़ के इलाज का, उसको इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जाए और दूसरा इंसान उसकी जितनी मदद कर सकता है कि ये उसकी अच्छाइयों में शुमार होता है। जबकि इस मदद का रोकना वो बलिहाज इंसान उसकी बुराइयों में शुमार होता है। कि इस और या इस चीज़ का कसद करें जिसका हमें हक नहीं, या दीन में बेजाने बूझे दखल दें। कि जिस तरह दीन में बेजाने बूझे वो दखल देना ममनू है, इसी तरह अकली मामलात में भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि उनकी एडवाइस को मानना वो वजूब अकली है, उनकी एडवाइस पे चलना कि उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं उनके अवाम को उनका मानना वो वाजिब अकली होता है, वो ज़रूरी होता है, वरना उस बीमारी का फैलाव नहीं रोका जा सकता। इसलिए वो लोग जो को इस मामले में समझ बूझ नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो इस मामले में दखल ना दें, और बल्कि वो एक्सपर्ट्स जो कि इन चीज़ों को जानते हैं और इस वायरस को भी के फैलाव को भी जानते हैं और उसके इलाज को भी जानते हैं, तो उन्हें चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो उनसे अपना इलाज कराएं, उनसे अपना मशवरा जो है वो तलब करें कि उनकी हिदायत और उनकी गाइडलाइंस पे अमल करें ताकि इस बीमारी का फैलाव भी रुक सके और मरीज़ों का इलाज भी हो सके और आगे पेशरफ्त भी हो सके। और हम तुझसे पनाह मांगते हैं इस बात से कि किसी को फरेब देने का कसद करें कि ये पेंडेमिक भी हमें यही सिखाती है, कोरोना पेंडेमिक भी, कि अगर जो फिगर्स शाये किए जा रहे हैं वो मुल्कों की तरफ से वो झूठे फिगर्स हों, कि वो सच्चाई के फिगर ना हो बल्कि फरेब पे मबनी हों, तो कोई वक्ती मसला तो शायद हल हो जाएगा लेकिन उससे जो है वो पूरी कौम का, पूरे मुल्क का भला, वो भलाई मुतासर होगी और पूरे मुल्क में वो पेंडेमिक से रिकवरी जो है वो मशकूक हो जाएगी और ख़तरे में पड़ जाएगी। या अपने अमाल पर नाज़ा हों और अपनी उम्मीदों का दामन फैलाएं, और हम तुझसे पनाह मांगते हैं बद बातनी और छोटे गुनाहों को हकीर तसव्वुर करने, और इस बात से कि शैतान हम पर गलबा हासिल कर ले जाए, तो पूरी इंसानियत को शैतान के गलबे के ख़िलाफ़ क़याम करना चाहिए और रहमान की मोहब्बत को अपने दिल में बहसियत इंसान हर इंसान को जगह देना चाहिए कि ये उसकी निजात का बायस है, कि ये उसकी वबाओं से निजात का भी बायस है, बीमारियों से निजात का भी बायस है और आखरत की बड़ी मुसीबत की निजात का भी बायस है। या ज़माना हमको मुसीबत में डाले, या फरमानवा अपने मजालिम का निशाना बनाए, तो मुस्तज़फ़ कौमों को कि जिनके पास वसाइल कम हैं कि उनको वो मुस्तकबर कौमें जो हैं वो अपने मजालिम का निशाना ना बनाएं, कि ये भी जो है वो जंग मुस्तकबरीन व मुस्तज़फ़ीन भी है, जो कि तमाम आसमानी दीनों की तालीमात में शामिल है, कि ये भी इस कोरोना पेंडेमिक के मवाइज में से है, कि उसकी नसीहतों में से है। और हम तुझसे पनाह मांगते हैं फजूल ख़र्ची में पड़ने और हसब ज़रूरत रिज़्क़ के ना मिलने से, और हम तुझसे पनाह मांगते हैं दुश्मनों की शमातत, हम चश्मों की एहतियात, ज़िंदगी सख्ती में ज़िंदगी बसर करने और तोशे आखरत के बग़ैर मर जाने से। तो सबसे बड़ी नसीहत जो कोरोना पेंडेमिक में है वो तोशे आखरत के बग़ैर मर जाने की नसीहत है, कि अगर मरें भी सही कि मौत बरहक है, कि कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। जब हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है तो उसके लिए कुछ आखरत के आमाल जमा करना, कुछ नेक आमाल का ऐसा सिलसिला भी चाहिए कि जो आखरत में सवाब की निजात की ज़मानत बन सके, कुछ अकायद भी चाहिए, कि कुछ ऐसा फेथ भी चाहिए कि जो आखरत में निजात का, कि वो जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसमें निजात का सामान फराहम कर सके। और तुझसे पनाह मांगते हैं बड़े तासुफ़ कि जिससे मुराद क़यामत है, कि वो बड़ा अफसोस, वो बड़ी मुसीबत यानी क़यामत की मुसीबत से, कि जिससे इंसानों के आमाल नामे उनके सामने आ जाएंगे और उन आमाल नामों की बुनियाद पे उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम दुनिया में वो नेक काम क्यों नहीं करते थे, कि मसलन तुम दुनिया में यतीम के इकराम क्यों नहीं करते थे, तुम दुनिया में फलां नेकी क्यों नहीं करते थे, क्या नबी या नबी का पैगाम तुम तक नहीं पहुंचा था। तो मुसलमानों को चाहिए इस कोरोना पेंडेमिक के हवाले से वो अल्लाह का पैगाम वो तमाम कौमों तक पहुँचाएँ और उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएँ। बदतरीन बदबख्ती के वो क़यामत में जो लोग गुनाहगार होंगे जिनका नाम है अमार उनके बाएँ हाथ में दिया होगा कि उनके लिए बेहतरीन बदबख्ती होगी। बुरे अंजाम यानी जिन्हें जहन्नम की तरफ हंकाया जाएगा कि सवाब से महरूमी और अजाब के बारे दोनों में कि जो हकीकी अजाब है वो जहन्नम का हमेशा हमेशा का अजाब है कि दुनिया की ये आने वाली बीमारियां या वबाएं थोड़ी देर के लिए होती हैं और उसके बाद इंसान उनसे निजात पा जाते हैं, लेकिन आखरत की जो बर्बादी है, आखरत की जो बदबख्ती है, आखरत का जो अजाब है वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसलिए उससे निजात की दुआ और उसके निजात के लिए वो तदाबीर इख्तियार की जाएं और उससे निजात के लिए एहतियातें इख्तियार की जाएं कि जो ज़्यादा अहम हैं। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा और अपनी रहमत के सदक़े में मुझे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात को इन सब बुराइयों से पनाह दे। ए तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।